कोर कमांडर जो कमांडर है सदर्न कमांड के क्वेटा के कोर कमांडर, वो डायरेक्टली सुपरवाइज करेंगे तमाम मामलात को। गवर्नर राज होगा, गवर्नर होंगे जुल्फकार अली मक्सी, लेकिन इख्तियार होगा फौज का। ये ऐलान किया जनाब वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने। अहमियत की बात यह है कि इसी किस्म के मुतालबात कराची के हवाले से भी होते रहे हैं और खुद इस हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें कराची में कराची को फौज के हवाले करने के लिए कह चुकी है। कराची की ताजर अंजुमने भी कह चुकी है, कराची में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि विफाक और सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से नाकाम रही हैं। इसी वजह से अब ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या गवर्नर राज और फौज के इख्तियार को सिर्फ कोयटा तक या बलूचिस्तान तक महदूद रखा जाएगा। सूरत हाल इस हवाले से संगीन नजर आती है क्योंकि इसी किस्म की बेचैनी की नुमाया करते हुए इस वक्त एक लॉन्ग मार्च भी हो रहा है और इस्लामाबाद में धरना हो रहा है। कुछ उसी नौयत का धरना है जो कि हमने कुछ दिन पहले देखा, आगाज हुआ जिसका कोयटा में और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या हुकूमत इस धरने के आगे भी मजबूर होगी उसी तरह से घुटने टेके जैसे कल कोयटा में टेके गए। कल के हवाले से भी ये बात बहुत आया है और साफ कही जा रही है कि कल अगर सुबह हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया है, क्या मौजूदा निजाम और गवर्नर क्या हालात को अक्सर बदल देंगे, क्या बलूचिस्तान की सूरत हाल तब्दील होनी शुरू हो जाएगी, हालात में तेजी से बेहतरी आ जाएगी, कौन सा ऐसा अमल होगा जो गवर्नर बलूचिस्तान करेंगे जनाब मक्सी करेंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल तेजी से तब्दील होनी शुरू हो जाए। कल मुजाकरात के नतीजे में सूबाई हुकूमत बरतरफ की गई और फिलहाल इसकी वजह से धरना खत्म हो गया, क्योंकि आज भी धरने के आसार कराची की हद तक आज सुपहर तक जारी थे, जब कराची का एयरपोर्ट भी बंद रहा, कराची में दूसरी कम्युनिकेशन लाइन भी बंद रही और उस जुहरेन की नमाज के बाद ये धरना खत्म किया गया। आगे के सिलसिले में हुकूमत ने क्या यकीन दहानियां कराई हैं ये हम पूछेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि जो जुमेरात का वाकया था उस हवाले से तो आंसू पोछे हैं हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत को बरतरफ कर दिया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक कदम हुआ, जो मजमू सूरत हाल है जो मुसलसल हो रही है, जो हजारा बरादरी को एक सिस्टमेटिक कत्ल किया गया है, फिर इसके अलावा अहले तशी को पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अंदाज में दहशतगर्द हमलों का निशाना भी बनाया गया है, ये सूरत हाल तो यकसर बदले या थोड़ी सी भी बदले इसकी आपको क्या गारंटी है, और अगर फिर खुदा ना खास्ता कोई वाकयात होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लोगों का बहुत सख्त इम्तिहान लिया गया गुज़श्ता 4-5 साल से। बलोचिस्तान के अंदर एक इंतहाई नायल और जैली किस्म की हुकूमत थी, इसका वजीर आला सा था जो कभी कोयटा में होता नहीं था या इस्लामाबाद में या पाकिस्तान से बाहर होता था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी और यहां पर लोग बेगुनाह मर रहे थे, बसों से उतार कर उन्हें मारा जा रहा था, हत्ता खुद वजीर आला के घर के बाहर सड़क से उतार कर लोगों को मारा गया, शनाख्ती कार्ड दे के मारा गया। लेकिन ये वजीर आला साहब ऐसे थे, जब इन्हें कहा जाता था कि आपके सूबे में हालात मखदूश हैं तो ये कहते थे कि रोने वालों के लिए मैं टिश्यू पेपर के ट्रक देता हूं। एक गैर इंसानी वजीर आला जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, ऐसे शख्स को 100 बकरियों का चरवाह नहीं बनाया जाता जिसके हवाले पूरा सूबा कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सब्र इस्तकामत के साथ जैसा आपने कहा पुरअमन एहतजाजात के जरिए इस जैली हुकूमत को खत्म किया है और यह पूरे मुल्क की आवाज थी, सिविल सोसाइटी की, वकला की, सियासतदानों की, तमाम जमातों की, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, हर एक की आवाज थी। सख्त इम्तिहान लिया गया, लोग 3 दिन तक अपने अजीजों के जनाजे लेकर सड़क के ऊपर बैठे रहे और यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी वफाकी हुकूमत के लोग हमेशा डिलेइंग टैक्टिक्स से इस्तेमाल करते हैं और ताखीर के साथ फैसले करते हैं जब पैमाने सब लबरेज हो चुका होता है। तो इस वक्त कोयटा में अल्हम्दुलिल्लाह वो जैली हुकूमत खत्म हो चुकी है, गवर्नर राज है। अब लोगों का दूसरा मुतालबा यह था कि कोयटा शहर के अंदर फौज को बुलाकर टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए। यह अमन चाहते हैं, यह नामनी खत्म करना चाहते हैं, यह नफरतें मिटाना चाहते हैं, यह वहादत चाहते हैं, यह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी यही हालत है, बदतरीन सूरत हाल सिंध में भी है और बदतरीन सूरत हाल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर भी वहां के वज़ीर आला सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे और यह मैसेज जाता है तमाम हुकूमतों को कि अगर उन्होंने आवाम के जान माल और हकूक की हिफाजत ना की लोग सड़कों पर आ जाएंगे और पुरमन एहतजाज के जरिए वो इन्हें ऐवानों से बाहर फेंक देंगे। यह जमहूरियत।
अच्छा साहब, ये बताइएगा क्या इसी वजह से मजलिस वहदत मुस्लिमीन और आप लोग इस लॉन्ग मार्च में शामिल हैं और क्या अब आप लोग अमली तौर पर इस लॉन्ग मार्च में भी शामिल हैं और धरने में भी शामिल होंगे जो इस्लामाबाद में अब किया जा रहा है?
میں عرض کرتا ہوں میں اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دھرنے کی حمایت کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ فضل الرحمان جیسے سمجھدار پولیٹیشین نے اس گورنر آج کی مخالفت کی، ان کی پارٹی کے لوگ موجود تھے، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کیوں نہیں کوشش کی؟ وہ بندر بانٹ میں جو یہاں پر پیسہ تھا لوٹ مار میں تو اکٹھے تھے، لیکن عوام کی جان مال کے لیے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. یہ انہوں نے یہ جو بات کی کہ یہاں گورنر آج غلط لگایا گیا ہے، شہدا کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ توقع نہیں تھی ان سے ہمیں. باقی بات جہاں تک لانگ مارچ کی ہے، طاہر القادری صاحب کے مطالبات آئینی ہیں، قانونی ہیں، پاکستان کے 18 کروڑ مظلوم عوام کی آواز ہے، ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور ہم اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں اور حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مافیا سیاسی اس وقت پاکستان میں موجود ہے جو مظلوموں پر ظلم کرتا ہے اور ایوانوں میں بیٹھ کر عوام کے حقوق کی کوئی بات نہیں ہوتی، آپ 5 سال دیکھ لیں کہیں کوئی عوام کا مسئلہ حل ہوا؟ جمہوریت.
بہت شکریہ، بہت شکریہ راجہ ناظر عباس. مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے لانگ مارچ کی مکمل حیات کر رہے تھے، ان مطالبوں کی بھی حمایت کر رہے تھے جو جناب طاہر القادری کر رہے ہیں. مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ لانگ مارچ میں حصہ بھی لے گی اور دھرنا میں بھی حصہ دے